ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹ ಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮಃಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವೀ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೇ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೇ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದೀ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೇ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಆದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಭಿ ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ ಹಮಾರೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸತ್ರೋ ಮೇ 32ವೇ ದಿನ ಹಮ್ ಅಂತ್ಯ ಲೀಲಾ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ ಚುಕೆ ಹೈ ಔರ್ ಕೈ ಸಾರೆ ಭಕ್ತೋ ನೇ ಆಜ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಹೈ ಔರ್ ಕೈ ಸಾರೆ ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಹಮ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ ಕಿ ಕಾಫಿ ಉನ್ನೆ ಅಚ್ಛೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಲೇ ಹೈ ಕುಚ್ ಲೋಗೋ ಕಾ ಉತ್ಸಾಹ ಬಡ್ ಗಯಾ ಹೈ ಕುಚ್ ಲೋಗ ಹತೋತ್ಸಾಹಿತ ಭೀ ಹೋ ಗಯೆ ಹೋಂಗೆ ಕಿ ಹಮೇ ಕಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಲೇ ಔರ್ ಉನ್ನೆ ಶಾಯದ್ ಪತಾ ಚಲ್ ಗಯಾ ಹೋಗಾ ಕಿ ಅಭಿ ಹಮೇ ಅಚ್ಛೆ ಸೇ ಪಡನಾ ಹೋಗಾ. ತೋ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಹಮ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ ಕುಚ್ ಭಕ್ತ ಜಿನ್ನೇ 20 ಮೇ ಸೇ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಲೇ ಹುವೆ ಹೈ ಸಹಿ ಮೇ ಉನ್ಕೋ ದಾದ್ ದೇನಿ ಹೋಂಗಿ. ತೋ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಏಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಹೇ ಅಕ್ಷಯಾ ಜೋಶಿ, ಅನೂಪ್ ಕೋಠಾವದೆ, ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿಣಿ ದೇವಿದಾಸಿ, ಗುಜರಾತ್ ಸೇ ನಿಕಿತಾ ಜಾಧವ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇ ಔರ್ ಹೇ ಓಜಸ್ವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರೇರಣಾ ಮೋರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಗುಜರಾತ್ ಸೇ ಹೇ ರಾಧಾ ಜಾಧವ್ ಮಾತಾಜಿ, ದುಬೈ ಸೇ ರಾಸ್ ರಾಣಿ ಪದ್ಮ ದೇವಿದಾಸಿ, ಶಾರ್ಜಹಾ ಸೇ ಹೇ ರೋಹಿಣಿ ಇಂದುಲಾಲ್ ಜಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇ ಹೇ ಶ್ರೀ ಚಂಪಕಲತಾ ದೇವಿದಾಸಿ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮಾಠಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ನಾಸಿಕ್ ಸೇ ಹೇ ವೋ ಭೀ, ಶುಭ ಚಂದ್ರ ಭಾಗಾ ದೇವಿದಾಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಔರ್ ವಂದನಾ ಮೋರೆ ಮಾತಾಜಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ. ತೋ ಶಾಯದ್ ಕೈ ಸಾರೆ ಮಾತಾಜಿಯೋ ನೇ ಬಾಜಿ ಮಾರಿ ಹೈ. ತೋ ಇನ್ ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಔರ್ ಬತಾನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ ಕಿ ಯೇ ತೋ ಕಾಫಿ ಆಸಾನ್ ಸವಾಲ್ ಥೇ ಔರ್ ಜೋ ಪ್ರಮುಖ ಮೇನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಯೇಗಿ ಉಸ್ಮೇ ಜೋ ಹೈ ಜೈಸೆ ಹಮನೆ ದೇಖಾ ಮಧ್ಯ ಲೀಲಾ ಮೇ ಭೀ ಹಮನೆ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ ಥಾ ಕಿ ವೈಷ್ಣವ ಕೆ ತಿನ್ ಸ್ತರ್ ಹೋತೆ ಹೈ, ವೈಷ್ಣವ, ವೈಷ್ಣವೋತ್ತರ ಔರ್ ವೈಷ್ಣವೋತ್ತಮ. ಔರ್ ಉಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಭೀ ತಿನ್ ಸ್ತರ್ ಪಾಯೆ ಜಾತೇ ಹೈ, ಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ, ಪೂರ್ಣೋತ್ತರ ಕೃಷ್ಣ ಔರ್ ಪೂರ್ಣೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ. ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಹಮಾರೆ ಜೋ ಪ್ರಶ್ನ ಆನೆ ವಾಲೆ ಹೈ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜೋ 3 ಮೈ ಕೋ ಹೋಗಿ ಉಸ್ಮೇ ಏಕ್ ಲೆವಲ್ ರಹೇಗಾ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಆಗೆ ತರ್ ಪ್ರಶ್ನ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಔರ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತಮ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ 50% ಪ್ರಶ್ನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಸಾನ್ ರಹೆಂಗೆ ಜೈಸಾ ಆಜ್ ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಆಸಾನ್ ಸವಾಲ್ ಥೇ, ಜಿನ್ಹೊನ್ನೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಢಾಯಿ ನೀ ಕೀ ಥೀ ವೋ ತೋ ಪಾಸ್ ಭೀ ಹೋನೆ ಕೀ ಸಂಭಾವನಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಮ್ ಹೈ ಇಸ್ಮೇ. ಔರ್ ದೂಸರೆ ರಹೆಂಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಶ್ನ ಜೋ 30% ರಹೆಂಗೆ ಔರ್ ಆಖಿರ್ ವಾಲೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತಮ ಮತಲಬ್ ಜೋ ಕಠಿನ್ ರಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸೆ ವೋ 20 ಪ್ರಶ್ನ ರಹನೆ ವಾಲೆ ಮತಲಬ್ 20%. ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ 100% ಪ್ರಶ್ನೋ ಕೆ ವಿಭಾಜನ್ ರಹೆಗಾ, 50% ಆಸಾನ್ ಪ್ರಶ್ನ, ಮಧ್ಯಮ ಜೊ ಹೇ ವೋ 30% ಔರ್ 20% ಪ್ರಶ್ನ ಜೊ ಹೇ ವೋ ಥೋಡೆ ಥೋಡೆ ಕಠಿಣಾಯಿ ಉನ್ಸೆ ಜೊ ಹೇ ವೋ ಅಧಿಕ ರಹೆಗಿ. ಔರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಕೈ ಸಾರೆ ಭಕ್ತ ಕುಚ್ ಲೋಗೋ ಕಿ ಆಯು 70 ಸೇ ಭೀ ಊಪರ್ ಹೈ ಔರ್ ಪಹಿಲಿ ಬಾರ್ ವೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ರಹೆ ಥೇ ತೋ ವೋ ಭೀ ದೇ ಪಾಯೆ, ಸಫಲ ಹೋ ಗಯೆ. ಕುಚ್ ಭಕ್ತ ನಹೀ ದೇ ಪಾಯೆ ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಕುಚ್ ಸೂಚನಾ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ಕಾ ಖುದ್ ಕಾ ಏಕ್ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ताकि इसमें आप लॉग इन करते समय जीमेल का आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालना कंपलसरी रहेगा, जिसके बिना आप लॉग इन नहीं कर सकते। ये है पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा यह है कि जब आप सबमिट करने जाते हैं, उसके नीचे सबमिट करने के बाद आपको कभी कभी कुछ चीजें पूछी जाती है, जैसे आप रोबोट नहीं है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसे कुछ वृक्षों के तस्वीरें दी जाती है और इसमें से ये वृक्ष कहाँ है, या कुछ ना कुछ पूछा जाएगा तो उसको आपको टिक करना है कहाँ कहाँ पेड़ दिखाए गए। वो ऑनलाइन गूगल का एक सिस्टम उन्होंने बना के रखा है कि आप रोबोट नहीं है, आप व्यक्ति है, वो लिख रहे परीक्षा। इस प्रकार से यदि आपको उसमें आपको साबित करना होता है, अभी क्या करे, गूगल के अपने नियम है, उन नियमों का हमें पालन करना होगा। तो इस प्रकार से जो है वो काफी भक्तों ने मॉक टेस्ट दी। तो 3 तारीख के लिए आप सब लोग और अच्छे से तैयारी कीजिए, यही हम लोग कहना चाहेंगे। और इसमें समय की भी पाबंदी आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत भक्तों ने तो 10 मिनट में भी सवाल सारे समाप्त कर दिए, कंप्लीट हो गया उनका पेपर और 90% लेके आ गए, तो ऐसा भी हुआ है। तो मुझे नहीं लगता किसी को समय की कमी अनुभव हुई होगी, तो समय काफी आपको जो है वो मिलने वाला है इस परीक्षा में। और कितने आसानी से हमने जो है वो 31 दिन मतलब लगभग एक महीना हमने पार कर दिया है। कोई एक भक्त मुझे पूछ रहा था कि आपको वही आप कार्य कर रहे हैं, आपको कुछ बोरियत नहीं महसूस हो रही है क्या, इतने दिन हो गए, लॉकडाउन कभी खुलेगा? तो मैं जस्ट छोटा सा गिन रहा था, हमारे 31 दिन हो गए हैं। 31 दिन भगवान के विग्रहों की सेवा हमें यहाँ पे मिली, 15 दिन भगवान को मंगल भोग खिलाने को मिला और 16 दिन भगवान के विग्रहों को शयन सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो और चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहा है। तो ऐसा यदि करने का अवसर प्राप्त है तो एक महीना क्या, एक साल क्या, एक संपूर्ण आयुष्य भी इस प्रकार से हम लोग निकल सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं लॉकडाउन में रह के भी। और एक आयुष्य भी क्या, यदि भगवान कहते हैं कि आपको यदि अच्छे से कृपा चाहिए तो आप दूसरे आयुष्य ले लीजिए और उसमें यही कार्य करते रहिए, नाम लेते रहिए, मंगल आरती करते रहिए, भागवत का श्रवण करते रहिए, शास्त्रों का अध्ययन करते रहिए। और हमारे पास अध्ययन के लिए शास्त्र कितने हैं, अभी तो हम लोग केवल चैतन्य चरितामृत की चर्चा प्रारंभ किए हैं, इसमें तो हमने तात्पर्यों को स्पर्श भी नहीं किया है अभी तक। तो वो तात्पर्य है, फिर चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है और कई सारे वैष्णव आचार्य जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो उन वैष्णव आचार्यों की जीवन चरित्र है, उनके द्वारा लिखे गए भजन है और उनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ कल कविराज गोस्वामी ने सुनाया ना हमने, जीव गोस्वामी का गोपाल चंपू, भक्ति रसामृत सिंधु, इतने 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 ग्रंथ है कि एक आयुष्य भी जो है वो हमारा कम पड़ सकता है इसमें अंदर। और इतने इतना तो यदि हमें दूसरा आयुष्य भी लेना पड़ा और उसमें भी भगवान कहते हैं कि और आपको कृपा चाहिए तो और दूसरा जन्म लेना होगा, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए प्रमाण है श्रीमद् भागवत में, यस्यांग्रि पंकज रजस्नपनम महांतो वांछन्ति उमापतिर्वात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्षन लभेय भवत् प्रसाद जय्याम असुन व्रतकृशान शतजन्म भी स्यात्। यस्य अंग्रि पंकज रजस्नपनम महांतो, बड़े बड़े महान लोग भी भगवान कृष्ण के चरण की रज चाहते हैं। कौन कौन चाहता है? यस्यांग्रि पंकज रजस्नपनम महांतो वांछन्ति उमापतिर इव आत्मतमोपहत्ये, स्वयं के अंदर का तमोगुण कम करने के लिए उमापति मतलब शिवजी भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज चाहते हैं। यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत् प्रसाद, यदि भगवान आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं हो रही है व्रतकृशान, तो मैं क्या जह्याम असून, मैं इस जीवन को त्याग कर दूंगी और इसके पश्चात नया जीवन ले लूंगी और व्रत करके उस जीवन को भी क्रुश करके छोड़ दूंगी, अगला जन्म लूंगी उसमें भी तपस्या करूंगी आपको पाने के लिए, वो जन्म भी त्याग करूंगी और ऐसा चक्र चलता रहेगा। कब तक? जहिया मसून व्रत कृषान शत जन्म भी स्यात, सैकड़ों जन्मों तक मैं इस प्रकार से तपस्या करके आपकी कृपा के अभिलाषी बनने के लिए प्रयास करूंगी। कौन कहता है? श्रीमद भागवत के 10वें स्कंद में रुक्मिणी ने जो प्रेम पत्र लिखा था भगवान श्री कृष्ण को, उसका ये श्लोक है। तो रुक्मिणी जो भगवान की साक्षात शक्ति है, वो इस प्रकार से लिख रही है कि हम इतने जन्म जन्म ये कार्य कर सकते हैं, तो हमें भी जो भगवान के विग्रह का सेवा है, भगवान के नाम का जप है, भक्तों का संग है और एक आधे बार थोड़ा प्रसाद कोई खिला दे, तो इस प्रकार से यदि हमारा जीवन ऐसा चलता रहे तो हम लोग ऐसे कई सारे जीवन भी न्योछावर करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हमने अंत्यलीला का कल चौथा अध्याय जिसका शीर्षक है सनातन गोस्वामी की महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में भेंट, उसकी चर्चा की। किस प्रकार से सनातन गोस्वामी जो है मथुरा से निकले और झारखंड के रास्ते से जगन्नाथपुरी आ रहे थे, और रास्ते से आते आते उनको जो कंडूरस एक बीमारी हो गई जिससे सारे शरीर के अंदर उनके फोड़े आ गए और उससे रस पस बाहर निकलता था, और जब वो वहां पर आए चैतन्य महाप्रभु जबरदस्ती से उनका आलिंगन किए तो उसने जो है वो दुख हो रहा था, और वो ये सोच के निकले थे कि मेरा शरीर कुछ काम का नहीं है और मैं जगन्नाथ जी का दर्शन वहां पर नहीं ले पाऊंगा तो मुझे आत्महत्या कर देनी चाहिए, वो भी जगन्नाथ जी के रथ के नीचे। तो महाप्रभु ने उनके उस विचार को खंडन कर दिया और कहा कि यदि अपने प्राणों का त्याग करके यदि कृष्ण मिलते तो मैं करोड़ों देहों को आत्महत्या के रूप में समर्पित करके कृष्ण की प्राप्ति करना चाहूंगा, लेकिन यह असंभव है, भक्ति बिना भगवान कभी प्राप्त नहीं हो सकते है, ये भी महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सुनाया। और हमने ये भी चर्चा की कि किस प्रकार से महाप्रभु ने उनकी परीक्षा की थी ज्येष्ठ महीने में, जहां पे बहुत कड़ी धूप वहां पर होती है, उस समय जब यमेश्वर टोटा में महाप्रभु रुके हुए थे, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बुलवाया था, और सनातन गोस्वामी जो शीतल और शॉर्टकट मार्ग था जो सिंहद्वार से होके जाता था वहां से नहीं गए, लेकिन वो गए समुद्र मार्ग से, रेती से तपते हुए रेती से चलकर वो महाप्रभु से जाके मिले, और महाप्रभु ने उसके पश्चात उन्हें पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया, तो वो कहे कि यदि मैं जाता और स्पर्श करता किसी पुजारियों को तो मुझे अपराध लग जाता क्योंकि मैं अधम हूं, पतित हूं, तो ये उनकी नम्रता। तो महाप्रभु ने कई सारे भक्तों से अलग अलग चीजें सिखाई है, सनातन गोस्वामी से हमें महाप्रभु नम्रता ये सिखाते हैं, और ये प्रचुर मात्रा में कल का जो वो वृत्तांत सुना उसमें हमें मिला। और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी रथ यात्रा देखते हैं, डोल यात्रा आदि महोत्सव करते हैं महाप्रभु के साथ में, कई सारे भक्तों की कृपा लेते वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं, और वृंदावन में फिर किस प्रकार से उन्होंने जो है वो कार्य किया, क्या क्या लिखा, हरि भक्ति विलास ग्रंथ लिखा, दशम टिप्पणी ग्रंथ लिखा, इन सारे ग्रंथों का वर्णन कविराज गोस्वामी ने सुनाया, अरूप गोस्वामी ने क्या क्या लिखान किया वो भी सुनाया, उनके बाद जीव गोस्वामी जो अनुपम के लड़का थे वो वहां पर गए, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, गोपाल चंपू आदि लिखा, उसके बारे में वर्णन किया। रूप गोस्वामी ने अपने जीवन काल में 1,00,000 श्लोकों की रचना की, जीव गोस्वामी ने उनके जीवन काल में 4,00,000 श्लोकों की जो है वो रचना की, और इतनी रचना है उनकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में जीव गोस्वामी के लिखान के ऊपर जो है वो PhD आप कर सकते हैं, और एक संपूर्ण लाइब्रेरी उनके लिए डेडिकेटेड है, इतना उनका लिखान है, इतना कार्य उन्होंने किया हुआ है। और वास्तव में हम लोग ये जो देख रहे हैं कविराज गोस्वामी ने लिखा हुआ है ठीक से कि मैं ये सब जो लिख रहा हूं अंत्यलीला ये किसके नोट से लिखी जा रही है, याद है आपको स्वरूप दामोदर का कड़चा, स्वरूप दामोदर के नोट से लिखे जा रहे हैं, और स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी में ही महाप्रभु के साथ रुके थे, तो स्वरूप दामोदर केवल वहां पर रुके थे तो इसलिए जगन्नाथपुरी के सारे पास टाइम यहां पर वर्णित है। तो इसके पश्चात जो भी भक्त वृंदावन जा रहे हैं या जो भी भक्त बंगाल में है इनका वर्णन यहां पर नहीं है, अभी चैतन्य चरितामृत में वो अलग जगह पाया जाता है, अलग अलग ग्रंथों में पाया जाता है। तो ये तो केवल एक लाइफ, मतलब यदि इन गोस्वामियों के जीवन के हम लोग दो विभाग करें पार्ट ए और पार्ट बी, तो इनका केवल पार्ट ए हमें यहां पर मिलता है कि महाप्रभु से मिले, क्या क्या शिक्षाएं मिली, कैसा जीवन उनका था। उसके पश्चात जो पार्ट बी है वृंदावन में जाके उन्होंने क्या क्या किया ये यदि हमें देखना है तो उसका एक दूसरे ग्रंथों से, दूसरे वरिष्ठ आचार्यों से सुनना होगा, तब जाके हमें उनके जीवन के बारे में पता चलता है। जैसे सनातन गोस्वामी ने केवल मदन गोपाल मंदिर की स्थापना की ऐसा कविराज गोस्वामी लिखते एक पंक्ति में, लेकिन उसके पीछे जो है वो एक पूरी किताब है कि किस प्रकार से उस मंदिर की स्थापना होती है और किस प्रकार से जो विग्रह सनातन गोस्वामी को मिलते हैं और कैसे उन्होंने तपस्या की, कैसे वो मंदिर बंधवाया गया, सारा वृत्तांत जो है वो हमें जो है वो वृक्ष के कुछ किताबें हैं उनमें मिलता है। और बंगाल का भी, बंगाल में इन लोगों का जीवन कैसे चलता होगा, आपने सोचा है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब 24 साल की उम्र में संन्यास लिया तो संन्यास लेने के पश्चात वो तुरंत 6 साल तो भ्रमण किए और 18 साल तो वो पूरी में रुके। तो शची माता तो एक दो बार मिली, लेकिन ऐसे जो भक्त थे जिन्हें महाप्रभु को मिलने का सौभाग्य कभी प्राप्त ही नहीं हुआ, और उनमें से सबसे प्रमुख थी उनकी पत्नी विष्णुप्रिया, जो वहीं पर बंगाल में रुकी। और चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया उनकी आयु केवल 16 साल थी, और वो विष्णुप्रिया माता जी 90 साल तक इस धरातल पर थी। और उनका जो है वो ओरिजिनल लॉकडाउन था, पूरे वो लॉकडाउन कंडीशन में रहती थी। ऐसा बताया जाता है कि वो घर से एक कदम बाहर भी नहीं जाती थी, और चावल कुछ रखे थे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी, उन चावल के दाने एक एक साइड में निकालती थी, एक मंत्र हो गया एक चावल हो गया, और जितने चावल बन जाते थे उनको ही पकाकर उनका भोग लगाकर वो पूरा उतने साल उन्होंने गुजारे। तो ऐसे कई सारे महान भक्त है वास्तव में, इनके जीवन चरित्र यदि हम लोग सुनना चाहे कहना चाहे तो सारे दिन रात साल जीवन कम पड़ सकते है। इतनी महान इनके जो है वो जीवन चरित्र है, इतने प्रेरणादायी इनसे हम लोग ले सकते हैं। तो केवल जगन्नाथपुरी में क्या क्या वृत्तांत हो रहे हैं उसका कविराज गोस्वामी स्वरूप दामोदर के कर्चा से जो है वर्णन कर रहे हैं। हालांकि स्वरूप दामोदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वाकिफ थे, क्योंकि वो भी जो है वो बाद में वृंदावन में गए। हम लोग हमारे अगले अध्याय में चर्चा करेंगे, अलग अलग गोस्वामी आएंगे महाप्रभु से मिलेंगे, फिर वो जाएंगे, और फिर किस प्रकार से कविराज गोस्वामी उनसे भी मिलते हैं वृंदावन में, उसका थोड़ा सा वर्णन जो है वो यहाँ पर आएगा। लेकिन वास्तव में यदि हमें उनके बारे में विस्तार से जानना है तो कई सारे और सत्रों की जो है वो आवश्यकता हो सकती है। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हमारा अध्याय 5 अंत्यलीला का, जिसका शीर्षक है प्रद्युम्न मिश्र इनका रामानंद राय से उपदेश पाना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो बहुत सुंदर कविराज गोस्वामी पहले श्लोक रचना करते हैं बहुत सुंदर तरीके से। वैगुण्य कीट कलितः पैशुण्य वर्ण पीड़ितः दैन्यार्णवे निमग्नोहम चैतन्यम वैद्यम आश्रये। चैतन्यम वैद्यम आश्रये, मैं चैतन्य महाप्रभु इन डॉक्टर को शरण जाता हूँ, वैद्य कहे हैं। क्यों, मैं कहाँ हूँ? सबसे पहले दैन्य अर्णवे निमग्नोहम, मैं इस वीनता के सागर में डूब रहा हूँ और उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो डॉक्टर की शरण वही ग्रहण करता है जो बीमार होता है। तो क्या हुई हमारी बीमारी, कविराज गोस्वामी बताते हैं। वैगुण्य कीट कलितः, जो भौतिक कर्म है उनके कीड़े मुझे काट रहे हैं, भौतिक क्रियाकलाप मुझे काट रहे हैं। और पैशुण्य व्रण पीड़ितः, इसका अर्थ है कि ईर्ष्या मत्सर आदि जो अनर्थ है वो जो है उनके छाले मेरे शरीर के ऊपर हो गए हैं। तो उनसे दूर जाने के लिए मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण कर रहा हूं। और इस प्रकार से शरण ग्रहण करते हैं और वृत्तांत सुनाने लगते हैं। एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम था प्रद्युम्न मिश्र, एक बार महाप्रभु के पास चले जाते हैं। महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करके महाप्रभु से निवेदन करते हैं कि हे महाप्रभु, मुझे आपसे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है। महाप्रभु तो सर्वप्रथम उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने की और सुनने की आपके मन में अभिलाषा उत्पन्न हुई है। तो महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण कथाएं रुचि तोमार बड़ भाग्यवान, यार कृष्ण कथाएं रुचि से ही भाग्यवान। आपके हृदय में कृष्ण के बारे में सुनने की अभिलाषा हो गई है तो आप बहुत बड़े भाग्यवान है। आप छोड़ो, जिस किसी व्यक्ति के मन में भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है वो इस संसार में सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है। तो सबसे बड़ा भाग्यवान वह व्यक्ति नहीं है जिसके बैंक में लाखों रुपए पड़े हुए हैं, जिसके जिसके बहुत सारे सगे संबंधी है, जो बहुत अमीर है। सबसे भाग्यवान व्यक्ति महाप्रभु बता रहे है वो है जिसके हृदय में कृष्ण कथा सुनने की अभिलाषा है। और महाप्रभु कहते हैं श्रीमद भागवत का श्लोक बताकर, धर्म स्वानुष्ठित पुंसाम विश्वक्से न कथासु यह न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम ए वही केवलम। पहले स्कंद में ही ये श्लोक आता है श्रीमद भागवत के। आप कितना भी आपने स्वधर्म का अच्छे से पालन कर लीजिए, जब तक भगवान श्री कृष्ण के कथाओं के प्रति आपकी रुचि उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक सारा जो भी है वो श्रम ए वही केवलम है। वो केवल केवल एक जैसे गधा एक कार्य को ढोता है, कुछ यहां से वहां लेके जाता है, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है उसमें। उसी प्रकार से सब कुछ केवल श्रम मात्र रह जाएगा, परिश्रम रह जाएगा, जब तक भगवान के दिव्य कथाओं में हमारी रुचि उत्पन्न नहीं हो जाती। तो महाप्रभु उसके भाग्य की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, देखो मैं तो कृष्ण के बारे में कुछ जानता नहीं हूं, जो भी थोड़ा बहुत जानता हूं वो मैंने रामानंद राय से सुन रखा है। तो आप क्या कीजिए, आप रामानंद राय के पास चले जाइए, उनसे सुनिए। तो प्रद्युम्न मिश्र बहुत बड़े ब्राह्मण हो गए थे कि चलो रामानंद राय से सुनने के लिए महाप्रभु बता रहे हैं, चलो चलते हैं। तो वो जाते हैं रामानंद राय के यहां पर, लेकिन रामानंद राय किसी दूसरे कार्य में मग्न थे। उनके सेवक ने उनका स्वागत किया, बिठाया और कहे बैठो थोड़ी देर के लिए, क्या है कि अभी दो किशोरी कन्याएं यहां पर आई हुई है, सुंदर युवतियां हैं, नाचने में और गाने में बिल्कुल निपुण है, उन्हें एकांत में किसी उद्यान में रामानंद राय लेके गए हैं और उन्हें वो नृत्य आदि सिखाएंगे, कुछ समय में आ जाएंगे, तब तक आप यहीं पर बैठ के उनकी राह देखिए, तब तक आप पानी जल आदि जो है वो ग्रहण कर लीजिए। क्या है ना, रामानंद राय ने अपना एक स्वयं का कुछ ग्रंथ लिखा हुआ है, उसके ऊपर ये दो नर्तकियां हैं वो जगन्नाथ जी के सामने नाटक प्रस्तुत करती है, तो उन्हें सिखाने का कार्य ये रामानंद राय करते हैं, तो आप बैठे रहिए, वो आ जाएंगे, तब बाद में मिलेंगे। तो प्रद्युम्न मिश्र बैठ गए, राह देख रहे, और अभी हमारा कैमरा लेके चलते हैं, रामानंद राय क्या कर रहे हैं वो गार्डन में। स्वहस्ते करेन तार अभ्यंग मर्दन, स्वहस्ते करन स्नान गात्र सम्मार्जन। अभी केवल ये दो युवतियां हैं, रामानंद राय अकेले उद्यान में है। स्वहस्ते न करेन तार अभ्यंग मर्दन, अभ्यंग मर्दन मतलब तेल से मालिश की जाती है, तो तेल के द्वारा मालिश कर रहे हैं उन लड़कियों की। स्वहस्ते करान स्नान, खुद के हाथ से उनको स्नान करा रहे हैं। और गात्र सम्मार्जन, स्वहस्ते परान वस्त्र सर्वांग मंडन, अपने हाथ से उनको वस्त्र पहना रहे हैं और सारे शरीर के दिव्यांगों को सजा रहे हैं। लेकिन फिर भी तबु निर्विकार राय रामानंदेर मन, लेकिन फिर भी उनके मन में जो है वो विकार बिल्कुल नहीं उत्पन्न हो रहा है। काष्ठ पाषाण स्पर्शे हय यही छे भाव, तरुणी स्पर्शे रामानंदेर तैचे स्वभाव। जिस प्रकार से मानो कोई व्यक्ति किसी लकड़ी या किसी पत्थर को स्पर्श करता है तो उसके मन में विकार नहीं उत्पन्न होते, उसी प्रकार से राय रामानंद उन महिलाओं को स्पर्श कर रहे थे, उन्हें सजा रहे थे, लेकिन उनके मन में जो है वो बिल्कुल विकार उत्पन्न नहीं हो रहे थे, क्योंकि रामानंद राय स्वयं को एक दासी के भाव में देख रहे थे और इन दो महिलाओं को, जो दो लड़कियां थी, दो किशोरियां थी, उन्हें वो गोपी भाव में देख रहे थे कि ये गोपियां हैं और मैं उनकी दासी हूं उस भाव में। और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, राय रामानंद जो है वो कई सारे भगवान कृष्ण की लीलाओं के अलग अलग लोगों के मिश्रण है। सर्वप्रथम ललिता देवी जो राधा रानी की प्रमुख सखी है वो उनके विस्तारित रूप है। दूसरा एक अर्जुनिया गोपी, वो भी उनमें सम्मिलित है। और जो पांच पांडवों में से एक पांडव है अर्जुन, वो भी उनके अंदर सम्मिलित है। और एक अर्जुन गोप सखा वो है, वो भी उनमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार से चार दिव्य लोगों के संगम के रूप में अवतरित हुए हैं श्री रामानंद राय जी। तो इस प्रकार से हमें उनका बैकग्राउंड समझना होगा कि वो कौन है सर्वप्रथम। इसलिए एक कवि कर्णपुर जो कि शिवानंद सेन इनके लड़के, उन्होंने एक किताब लिखी है गौर गणोद्देश दीपिका, जिसमें गौरांग महाप्रभु के जो भी पार्षद है वो कृष्ण लीला में कौन थे इनके बारे में विस्तार से वर्णन आया है। तो आप आज जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाल रखा है, इस्कॉन डिजर्टरी का एक बहुत सुंदर उपक्रम है, उन्होंने यही किताब गौर गणोद्देश दीपिका उसका सारांश निकाल के उन्होंने एक तालिका बनाई हुई है कि गौर लीला में यह व्यक्ति, कृष्ण लीला में ये था। तो आपका पूरा सारांश में यह तालिका यानी चार्ट आपको मिल जाएगा यदि आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो रामानंद राय इस प्रकार से जो है वो अपने आप को इन गोपियों की दासी के भाव में जो है वो मान रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य यहां पर लिखा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि रामानंद राय क्योंकि गोपी भाव में थे, राग मार्ग का अनुकरण कर रहे थे और अपने आप को दासी मान रहे थे, हमें इस बात की नकल कभी नहीं करनी चाहिए और कोई भी सक्षम नहीं है इसकी नकल करने के लिए। तो ये सतर्कता हमें देते हैं श्रील प्रभुपाद जी और कहते हैं कविराज गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभु के भक्त इतने दिव्य हैं, इतने महान हैं और हमें उनकी जो लीलाएं हैं वो हमारी बुद्धि से कभी समझ में नहीं आ सकती। तो रामानंद राय वास्तव में क्या कर रहे थे, उन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था जगन्नाथ वल्लभ नाटक। तो वो नाटक जो है वो जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए ये नर्तकियां वहां पर प्रस्तुत किया करती थी हर दिन शाम के समय। तो इसलिए वहां पर जो अलग अलग भाव होते हैं ना, जैसे स्थाई भाव और सात्विकी भाव, संचारी भाव, इन अलग अलग भावों को अपने आंखों के द्वारा, अपने गीत के द्वारा कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, किस प्रकार से हमारी मुद्राएं होनी चाहिए भगवान के सामने, इन सारे मुद्राओं को रामानंद राय स्वतः उन्हें सिखाते थे और वो फिर जाके जगन्नाथ जी के सामने प्रस्तुत किया करते थे। तो ये उनका जो है वो नित्य क्रम था और फिर वो भगवान के सामने जब प्रकट किया करती थी। तो अभी रामानंद राय ने वो सब सिखाया, रामानंद राय ने फिर उन्हें प्रसाद खिलाया और उन दो लड़कियों को फिर अपने घर भेज दिया। और रामानंद राय जैसे ही फिर अपने हॉल में प्रवेश करते हैं घर के, तब पाते हैं अरे वहां पर तो प्रद्युम्न मिश्र रहा देख रहे बैठे थे। तो रामानंद राय उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, बहुक्षण आईला मोरे किहना कोहिल, तुम्हारे चरण मोर अपराध होइल। कितना समय हो गया आप राह देख रहे हैं, मुझे किसी ने सूचित भी नहीं किया है और मेरे से अपराध हो गया है, कृपया मुझे क्षमा करें, बताइए, आज्ञा दीजिए, आप मालिक है, आपके दर्शन से मेरा आज का दिन धन्य हो गया है, मेरा गृह धन्य हो गया है आपके चरणों के स्पर्श से, आप जो आज्ञा देंगे मैं वो करने के लिए तत्पर हूं, बताइए क्या करना है। अभी प्रद्युम्न मिश्र तो आए थे कृष्ण की कथा सुनने के लिए, महाप्रभु ने उन्हें भेजा था, लेकिन अभी इतना समय निकल गया था और उन्होंने सुना कि ये क्या कुछ कर रहे हरकतें, तो उनके मन में थोड़ा संशय उत्पन्न हो गया और वो फिर कहते कि कुछ नहीं, मैं तो केवल आपके दर्शन लेने के लिए आया था, आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन पवित्र हो गया, अभी मैं चलता हूं। और प्रद्युम्न मिश्र यहां से फिर निकल जाते हैं। प्रद्युम्न मिश्र निकल जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास और चैतन्य महाप्रभु तुरंत पूछते हैं, क्या प्रद्युम्न जी कथा सुनी कृष्ण की? प्रद्युम्न मिश्र कहते हैं, कथा क्या, व्यथा सुनो सबसे पहले। तो इस प्रकार से क्या सारा वृत्तांत बताते हैं, किस प्रकार से रामानंद राय उन्हें ऐसे एकांत में वो लड़कियों को लेके गए, उन्हें सजाया, ये किया, वो किया, खाना खिलाया। तो चैतन्य महाप्रभु को समझ में आ गया अभी इसके मन में क्या चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु उन्हें समझाते हैं, देखो मैं सन्यासी हूं और अपने आप को मैं विरक्त मानता हूं, स्त्री को देखने की तो बात भी दूर है, यदि मैं केवल उनका नाम भी सुनूं तो भी मेरे मन के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, सन्यासी हूं फिर भी। इस संसार में कोई ऐसा है जो स्त्रियों को देख के उसके मन में विकार उत्पन्न नहीं हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो राय रामानंद है उनकी बात अलग है, इस प्रकार से वो समझाते हैं। हालांकि वो उन्हें नहलाते होंगे, उनके शरीर को स्पर्श करते होंगे, लेकिन उनका मन जो है वो बिल्कुल निर्विकार है और यह कार्य करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति है संसार में जो कर सकता है और वो है रामानंद राय। एक रामानंदेर है ये अधिकार, ताते जानी अप्राकृत देहताहार। इसलिए वो अकेले है इस संसार में जो ये कार्य कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। और आप जान लो और समझ लो, उनका जो देह है, उनका जो शरीर है, वह बिल्कुल प्राकृत और भौतिक नहीं है। एक अप्राकृत देह में वो निवास कर रहे हैं और अपने आप को दासी मान के वो इस सेवा को जो है वो कर रहे हैं। और इस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं कि शास्त्रों में भी इस प्रकार से वर्णन जो है वो पाया जाता है, जो भगवान की दिव्य लीलाएं जो है वो सुनकर भी किसी व्यक्ति के मन से जो है वो विकार चले जा सकते हैं। विक्रीडितम व्रज वधु भीरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुश्रुणियाद अथ वर्णयेद यः भक्तिम परम प्राप्ति। तो भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त हो सकती है, रुद्रोगम आशुम अपहिनोति अचिरेण धीरः, उसके हृदय का जो सारा कामरूपी रोग है वो चला जा सकता है और वो व्यक्ति धीर बन सकता है, यदि भगवान की दिव्य लीलाओं को केवल वह सुने और दूसरों को सुनाए तो इस प्रकार से, तो केवल भगवान की कथा कहने से सुनने से यदि व्यक्ति के हृदय की कामवासना कम हो सकती है तो रामानंद राय वो तो भगवान के नित्य संगी पार्षद है, उनको केवल अकेले को यह अधिकार जो है वो प्राप्त है। रागानुग मार्गे जानी रायर भजन सिद्ध देह तुल्यता ते प्राकृत न है मन। वो रागानुग मार्ग के अनुगामी है, यही उनका भजन है, और उन्हें जो है वो ये सिद्ध देह तुल्य, उनका जो सिद्ध देह है वो प्राकृत बिल्कुल नहीं है, और उनका मन बिल्कुल भी विकार से जो है वो शून्य है। और मैंने भी रामानंद राय से कथा सुनी है, जब मैं विद्यानगर में दक्षिण भारत में गया था, मध्य लीला अध्याय 8 यदि आपको याद है, तो उसमें मैंने भी रामानंद राय से दिव्य कथाओं का आस्वादन किया है। और क्या करो, आप पुनः जाओ उनके पास और इस बार बताना कि महाप्रभु ने भेजा है कृष्ण की कथा सुनने के लिए, और ऐसा मेरा नाम बता के आप पुनः सुनो। लेकिन जल्दी जाओ, अभी वो सभा मंडप में होंगे, बाद में पुनः उनका दूसरा कार्यक्रम चालू हो जाएगा तो मिलेंगे नहीं। प्रद्युम्न मिश्र वहां से उठ के भागते 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 रामानंद राय के पास पुनः चले जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। रामानंद राय पूछते हैं, अरे आज आप वापस आ गए, क्या कुछ खास, कैसे आना हुआ? फिर प्रद्युम्न मिश्र कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिला था, उनसे आज्ञा लेके आया हूं, उन्होंने कहा कि जाके रामानंद राय से कृष्ण कथा सुनो। मिश्र कहे महाप्रभु पाठाइला मोरे तुम्हारे स्थाने कृष्ण कथा सुनी भारत तोरे। मैं आपसे कृष्ण कथा सुनने के लिए आया हूं। और जैसे ही रामानंद राय सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है, कितना सौभाग्य है मेरा, आओ आओ बैठो बैठो, एकांत में उन्हें लेके जाते हैं और बिठाते हैं और बैठते हैं और कहते हैं कि क्या सुनने की अभिलाषा है आपकी, कहिए फरमाइश। प्रद्युम्न मिश्र कहते हैं कि वही सुनाइए जो विद्यानगर में आपने महाप्रभु को सुनाया था, वही सुनना चाहता हूं। तो फिर रामानंद राय अभी प्रेमावेश में आके कृष्ण कथा प्रारंभ करते हैं। तबे रामानंद क्रमे कहिते लागिला कृष्ण कथा रसामृत सिंधु उठाइला। इस प्रकार से कथा कहने लगे कि कृष्ण कथा का मानो रसामृत की सिंधु उफन रहा था, इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण कथा प्रारंभ कर दी। और उस समय तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर उपस्थित थे जो प्रश्न पूछ रहे थे, यहाँ पर रामानंद राय स्वयं प्रश्न पूछ रहे थे, स्वयं जवाब दे रहे थे, स्वयं प्रश्न पूछ रहे थे, जवाब दे रहे थे, कृष्ण कथा आस्वादन कर रहे थे। वक्ता और श्रोता दोनों अपने आप को भूल जाते हैं और कृष्ण कथा के सागर में डूब जाते हैं। 3 प्रहर निकल जाते हैं, समय की समझ भी नहीं रहती, समझ में नहीं आता कितना समय हो गया। सुबह के लगभग 8-9 बजे बैठे रहेंगे, शाम हो जाती है, वो सेवक परेशान हो जाता है, रामानंद राय को आके कहता है कि अरे आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है, आप लोग भूल गए, दिन समाप्त हो गया है। तो फिर वो रामानंद राय को समझ में आ जाता, बाह्य चेतने में आ जाते, अरे शाम हो गई, कुछ खाया भी नहीं है। और फिर वहां से जो प्रद्युम्न मिश्र निकल जाते हैं, राय रामानंद कथा को वहां पर विश्राम देते हैं। और फिर अभी प्रद्युम्न मिश्र से रहा नहीं जाता, सीधा पहुंच जाते हैं महाप्रभु के पास और महाप्रभु के चरणों में दंडवत करते हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा करना महाप्रभु, मैं रामानंद राय के प्रति अपराध कर रहा था। महाप्रभु बोलते क्या हो गया, कुछ कथा विता सुनी? अरे कथा क्या, इतना कथा में तो उन्होंने मुझे निमग्न कर दिया, डुबा दिया, बाकी किसी चीज को मुझे तो अभी याद भी नहीं रहा, कितना समय हो रहा है। मिश्र कहे प्रभु मोरे कृतार्थ करिला कृष्ण कथा मृत अर्णवे मोर डुबाइला। क्या कृष्ण कथा किए, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कृतार्थ कर दिया है। कृष्ण कथा मृत अर्णवे मोरे डुबाइला, कृष्ण कथा के अर्णव का अर्थ है सागर, उसके सागर, उस कृष्ण कथा के समुद्र में उन्होंने मुझे जो है वो डुबा दिया है। रामानंद राय कथा कही लेना होए मनुष्य न है राय कृष्ण भक्ति रसमय। क्या कथा कहते हैं वो मनुष्य तो है ही नहीं, कौन है फिर वो है कृष्ण भक्ति रसमय, कृष्ण भक्ति का रस का वो विग्रह है, कृष्ण भक्ति के रस की वो मूर्ति है, मानो ऐसा उनका विग्रह है, वो बिल्कुल मनुष्य शरीर उनका नहीं है। और रामानंद राय जो है उन्होंने मुझे और एक बात बताई है, रामानंद राय ने बताया कि वो तो केवल बोल रहे थे लेकिन वक्ता वो नहीं है। रामानंद राय क्या कहे मुझे, मोर मुखे कथा कहें आपने गौर चंद्र ये छे कहाई तई छे कही ये न वीणा यंत्र। कि रामानंद राय कहे कि मेरे मुख से जो वक्ता है वो गौरचंद्र है, गौरांग महाप्रभु मेरे मुख से बुलवाए है, जिस प्रकार से मैं तो केवल वीणा हूं और वो तो वीणाधारी है, और वीणाधारी जिसे वीणा से टंकार करे तो वीणा बजती है, उसी प्रकार से श्री गौरचंद्र राय जब मेरे मुख से बुलवाते हैं तब मैं जो हूं वो बोलता हूं। जो भी सुना है वो तो बिल्कुल अमृत से भी बढ़कर है, और ब्रह्मा जी को भी ये शायद लाभ नहीं प्राप्त हो सकता, वो मुझे प्राप्त हो गया है। ऐसा अपना सौभाग्य का गुणगान करते हुए कहते हैं कि आपकी कृपा से जो है वो मुझे आस्वादन हो गया है, आपके चरणों में मैं पड़ता हूं। कितने विनयशील है रामानंद राय, उनकी नम्रता का गुणगान करते हैं प्रद्युम्न मिश्र। और फिर रामानंद राय की नम्रता सुन के महाप्रभु कहते हैं, महानुभावेर यही सहज स्वभाव है, अपनार गुण नहीं अपन कहे। महानुभाव का यह स्वभाव होता है कि स्वयं की प्रशंसा कभी वो करते नहीं है, इसलिए रामानंद राय ये महानुभाव है जो नम्रता से मेरा गुणगान कर रहे हैं और स्वयं को उसका जो है वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैंने जो है वो वृत्तांत सुनाया है। गृहस्थ हैया नहे राय षड वर्गेर वशे विषय हैया सन्यासी रे उपदेशे। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रामानंद राय गृहस्थ थे लेकिन फिर भी षड वर्गों से परे थे। षड वर्ग मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। तो ये छह जो वेग है उनसे वो परे है, और गृहस्थ होने के बावजूद वो सन्यासी को भी कथा का आस्वादन करा सकते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु को भी उन्होंने जो है वो कथा सुनाई थी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है वो निपुण है अपने भक्तों का गुणगान कराने में। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से प्रद्युम्न मिश्र एक ब्राह्मण थे, उन्होंने कथा सुनी जो राय रामानंद वो कि एक शूद्र थे। चैतन्य महाप्रभु जो कि सन्यासी थे, उन्होंने कथा सुनी रामानंद राय से जो कि एक गृहस्थ थे। तो गृहस्थ और शूद्र जन्म, और यहां पर सन्यासी और ब्राह्मण प्रद्युम्न मिश्र, ये दोनों सुन रहे थे। तो महाप्रभु यहां से हमें यह सिखलाना चाहते हैं, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कृष्ण के बारे में जो जानकारी रखता है वो वास्तव में जो है वो कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए योग्य है। आप कौन से कुल में जन्मे हुए है या आप कौन से आश्रम में है ये बिल्कुल मायना नहीं रखता है। इस प्रकार से सन्यासी पंडित गणेर करिते गर्वनाश, नीच शूद्र द्वारा कर एन धर्मेर प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु की विशेषता बता रहे हैं कि सन्यासी और पंडितों का उन्होंने गर्वनाश किया, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती आदि, इनके गर्व का उन्होंने नाश किया। और नीच शूद्र द्वारा करें धर्मेर प्रकाश, नीच और शूद्र लोगों को ऊपर उठाया और उनके द्वारा धर्म का प्रचार का कार्य को आगे बढ़ाया। और किस किस भक्त के द्वारा क्या क्या कराया इसका वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी। हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश। हरिदास ठाकुर जो कि एक मुस्लिम परिवार में जन्मे हुए थे, हमने उनकी महिमा का गान किया था तीसरे अध्याय में अंत लीला के। हरिद्वास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। सनातन गोस्वामी जो भी मुस्लिम की सेवा उन्होंने की थी म्लेच्छ की, वो भी म्लेच्छ में उनकी गणना होती थी पूरी में। सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, भक्ति के सिद्धांतों का प्रकटीकरण सनातन के द्वारा उन्होंने कराया। श्री रूप द्वारा व्रजेर प्रेमरस लीला, श्री रूप के द्वारा उन्होंने जो है वो व्रज प्रेम की लीलाओं का उद्घाटन सारे जगत के सामने किया। के भुजित पारे गंभीर चैतन्य रखेला। चैतन्य महाप्रभु का जो ये जो लीला है कौन जो है वो उनको समझ सकता है। श्री चैतन्य लीला यही अमृतेर सिंधु, त्रिजगत भाषाएं पारे यार एक बिंदु। महाप्रभु की दिव्य लीला तो एक अमृत के सिंधु के समान है। त्रिजगत भाषाएं ते पारे यार एक बिंदु, इन लीलाओं का एक बिंदु भी काफी है इन तीन जगतों को जो है वो प्रकाशमान करने के लिए और इनका उद्धार करने के लिए। चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, यहां होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। नित्य पान करना चाहिए चैतन्य चरितामृत का, उससे क्या होगा, यहां होते प्रेमानंद, आपके अंदर प्रेम का आनंद बढ़ने लगेगा और भक्ति तत्व ज्ञान, भक्ति के तत्वों को हम लोग ठीक से जो है वो समझ सकते हैं। और इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु अपने अन्य भक्तों के साथ इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं जगन्नाथपुरी में जो है वो किया करते थे। एक दूसरा वृत्तांत सुनाते हैं कविराज गोस्वामी। बंगाल से एक ब्राह्मण आए थे जिन्होंने एक नाटक की रचना की थी और बंगाल से आए थे पुरी तक, और उनकी इच्छा थी कि यह नाटक महाप्रभु के सामने प्रस्तुत किया जाए। महाप्रभु के ऊपर ही उन्होंने नाटक लिखा था और वो प्रस्तुत करना चाहते थे। भगवान आचार्य, इनसे वो पहले से परिचित थे, इसलिए भगवान आचार्य इनके घर पर वो रुके और भगवान आचार्य और बाकी भक्तों को उन्होंने वो नाटक सुनाया। जैसे उन्होंने सुना, उन्होंने प्रशंसा की, वाह वाह वाह, क्या नाटक रचा है, चैतन्य महाप्रभु ने तो अवश्य इसे सुनना ही चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, हमें पता है, उनका एक नियम था, जो भी कुछ भी कविता करता था, नाटक करता था, ग्रंथ लिखता था, सबसे पहले उन्हें स्वरूप दामोदर के पास लेके जाया जाता था। स्वरूप दामोदर देखते थे, इसमें कुछ रसाभास तो नहीं है, इसमें कुछ सिद्धांत के विरोधी बात तो कही नहीं गई है, तो स्वरूप दामोदर पहले वो चेक करते थे। और स्वरूप दामोदर जब सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे, और यदि वो पास कर दे तो जाके वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाया जाता था। यदि उन्होंने उसको तिरस्कृत कर दिया तो महाप्रभु के पास वो कभी नहीं जाता था। तो इस प्रकार से ये वहां का नियम था, जो भी कविता नाटक है सर्वप्रथम जाएगी स्वरूप दामोदर के पास, उसके पश्चात जाएगी चैतन्य महाप्रभु के पास, यदि पारित हो जाती है तो। तो ये नियम सर्व सर्व सबसे सबको पता था। तो भगवान आचार्य एक दिन स्वरूप दामोदर से विनती करते हैं, एक बंगाल से आया हुआ है ब्राह्मण, बहुत सुंदर नाटक लिखा है, जरा महाप्रभु को सुना दो ना, बहुत अच्छा है। स्वरूप दामोदर कहते हैं कि आप भी क्या भगवान आचार्य इतने उदार हो जाते हैं, कोई भी अरे गरे को लेके आते हैं और कहते महाप्रभु को सुनाओ, ये कुछ भी रस्ते में चलते लड़के लड़कियों को कुछ नाटक लिख दे, कहते कृष्ण की लीला, ऐसा नहीं चलता है। जिसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है, जिसे अलंकार का ज्ञान नहीं है, जिसे नाटक शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिसे कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान नहीं है, उसका नाटक जब सुनते हैं तो दुख हो जाता है मन में। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना प्राणधन के रूप में स्वीकार किया हुआ है, वही व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करने में सक्षम है, उसी ने करना चाहिए। और इसका आदर्श उदाहरण रूप गोस्वामी ने स्थापित किया है। वाह क्या नाटक लिखा था रूप ने, विदग्ध माधव, ललित माधव, और क्या श्लोक थे उनके, सारा वैष्णव समाज प्रसन्न हो गया था, ऐसा नाटक होना चाहिए तो सुनने में मजा आता है। भगवान आचार्य कहते, आप एक बार सुनो तो पहले, आप सुन लो बाद में देखते चैतन्य महाप्रभु को सुनाना है कि नहीं। ऐसे बार 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 विनती करते भगवान आचार्य, फिर जाके स्वरूप दामोदर कहते ठीक है लेके आओ उसको, और लेके आओ कहते हैं। और फिर जैसे हमें पता है रामानंद राय ने रूप गोस्वामी की परीक्षा की थी, तो उस प्रकार से स्वरूप दामोदर अभी यहाँ पे परीक्षा करते हैं और कहते हैं सुनाओ नांदी श्लोक तुम्हारा क्या है, और वो नांदी श्लोक सुनाता है। ये अंत्य लीला के पांचवें अध्याय का 112 श्लोक संख्या, इसमें वो नांदी श्लोक सुनाते हैं। विकच कमल नेत्रे श्री जगन्नाथ समने कनक रुचि ही आत्मन्यात्मताम यह प्रपन्न प्रकृति जड़म अशेषम चेतना विरासित स दिशतु तव भव्यम कृष्ण चैतन्य देवः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सुनहरा वर्ण धारण कर लिया है और जगन्नाथ नामक शरीर के वो आत्मा बन गए हैं, जिनके विकसित कमल नेत्र अतीव विस्तृत है। इस तरह वे जगन्नाथ पुरी में प्रकट हुए हैं और उन्हें जड़ पदार्थ को भी चेतन बना दिया है। वे कृष्ण चैतन्य आप सबको सौभाग्य प्रदान करें। सारे वैष्णव वहां पर बैठे, वाह 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 वाह, क्या श्लोक बनाया है, क्या श्लोक बनाया है, क्या रचना है, अतीव सुंदर अतीव सुंदर। स्वरूप दामोदर कहते रुको रुको रुको, प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं, पहले इसका अर्थ तो सुनो। तो फिर वो उनका अर्थ सुनाना लगते है कि जगन्नाथ जी कितने सुंदर शरीर है और चैतन्य मानो उनके शरीर में एक आत्मा के समान है। स्वरूप दामोदर तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, नालायक, कुछ रचना करना आता है कि नहीं, जगन्नाथ जी को एक स्थूल शरीर मान रहा है, उनके प्रति अपराध, और दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनको जीव के स्फुल्लिंग की तुलना कर रहा है, उनके प्रति भी अपमान, घोर अपराध, अपना खुद का सर्वनाश कर बैठेगा, कहां भोगेगा इससे पाप के कर्म, इतना बड़ा जघन्य अपराध कर रहा है तू, दोनों के प्रति अपराध किया है। अरे इस भौतिक संसार में शरीर और आत्मा, इसमें भेद होता है, कभी देखा है आध्यात्मिक संसार में भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनके शरीर और आत्मा ये तो छोड़ दो, उनके नाम और नामी में भी, नाम नामी अभिन्नत्वम, उसमें भी भेद नहीं होता है, नाम और नाम उनके उनके रूप और उनके नाम में भी भिन्नता नहीं होती है। आप यहां पर कह रहे उनके शरीर और उनका आत्मा अलग से है और शरीर भी जड़ बता रहे हैं और आत्मा जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जीव की उपमा दे रहे हैं। गलत, बिल्कुल गलत। क्या रचना करते हैं कुछ भी। कहां पूर्णानंद ऐश्वर्य कृष्ण माहेश्वर, कहां भद्र जीव दुखी माया रकिंकर, कहां जो है वो बद्ध जीव जो माया का दास है और कहां पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण जो है वो हमारे कृष्ण जो माया से परे, माया से परे है। सारे लोग वहां पर देख के जो गुणगान कर रहे थे अभी श्लोक सुनकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये तो फांसा पलट गया बिल्कुल। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि ये अपराधी है जिसने ठीक नहीं किया है। और जो कवि वो यहां से इतना दूर आया था बंगाल से यहां तक सुनाने के लिए, उसका तो बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। उसे लगता था मैंने कितना बड़ा कवित्व की रचना की है। शून्या कविर हैल लज्जा भय विस्मय, हम समदे बकय छे किछु नाही कोय। लज्जित हो गया, भयभीत भी हो गया और विस्मित भी हो गया, और मानो उसे ऐसा लगने लगा कि हंस के बीच में एक कौवा मैं बैठा हुआ हूं। हम समदे बकय छे किछु नाही कोय, कुछ नहीं मैं जानता हूं, ये सारे हंस लोग हैं, इनके बीच में एक बगुला एक कौवा मैं आके बैठा हूं, ऐसा उसे प्रतीत होने लगा। स्वरूप दामोदर को ठीक नहीं लगा। स्वरूप दामोदर फिर उसे उसके लाभ के लिए कुछ उपदेश देते हैं। स्वरूप दामोदर कहते हैं, यह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। जाओ जाके वैष्णव स्थाने, वैष्णव के पास जाके श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो और श्री चैतन्य महाप्रभु की केवल और केवल उनके चरणों में आप शरण ग्रहण करो। चैतन्य भक्त गणेर नित्य कर संग, तबेत जानीब सिद्धांत समुद्र तरंग। भक्ते चैतन्य भक्तेर नित्य कर संग, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का नित्य आप संग करो और तब आप जान सकते हैं सिद्धांत समुद्र तरंग। सिद्धांतों को आप अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं और तब जाके जब तुम ऐसा करोगे, वैष्णव से भागवत समझोगे, महाप्रभु के भक्तों का संग करोगे और महाप्रभु की एकांत शरण ग्रहण करेंगे, तब जाके आपका पांडित्य और आपकी विद्वत्ता सफल बनेगी और तब जाके आप कभी आगे चल के कृष्ण लीलाओं का अच्छे से निर्मल रूप में वर्णन कर सकते हैं। और फिर इसका अभी अच्छे से गुणगान करने के लिए कहते हैं, आपने जो श्लोक लिखा वो बहुत अच्छा है। अभी देखिए उसका खंडन कर चुके हैं पहले और अभी कह रहे हैं कि आपने जो श्लोक लिखा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने अर्थ उसका गलत निकाला है। तो ये गलत अर्थ जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन माँ सरस्वती ने आपके मुख से मानो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान ही किया है। इस प्रकार से वो कहते हैं कि इंद्र ने भी भगवान कृष्ण की प्रताड़ना की थी। इंद्र लीला के पश्चात श्रीमद् भागवत में जब उनकी पूजा नहीं की गई थी, कृष्ण ने गोवर्धन धारण कर लिया था और सारे संवर्तक बादल जब भेजे थे, तब इंद्र ने कृष्ण को क्या कहा था पता है? वाचालं बालिशं स्तब्धं अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपाये चक्रु अप्रियम। क्या ये कृष्ण वाचालम, मतलब कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे नंद महाराज और आदि गोपों को कि आप इंद्र की पूजा मत करो, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, तो ये क्या कहते? इंद्र ने इतनी सारी गालियां दी थी कृष्ण को, क्या क्या? सबसे पहला कहा था वाचालम, ये तो केवल बातूनी है, केवल बातें करता रहता है, कौन सुनता है इसकी बातें। वाचालम बालिशम, बालिशम मतलब ये छोटा बच्चा, क्या इसे आता है? स्तब्धम मतलब दुष्टता, देखो इतना छोटा होके बड़ों को उपदेश करता है, ये है स्तब्धम। अज्ञम, अज्ञम का अर्थ है जिसे कुछ ज्ञात नहीं है, मतलब मूर्ख। इंद्र ने कृष्ण को मूर्ख कहा था। और पंडित मानिनम, और कुछ आता तो है नहीं और स्वयं को विद्वान मान बैठा है, यह है पंडित मानिनम। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, एक साधारण मनुष्य के रूप में आया हुआ बालक है और गोपा में चक्रुर कर्तुम अप्रियम, और गोपों को उसने उपदेश दिया है और मुझे अप्रसन्न ये लग रहा है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 गालियां इंद्र ने दी थी कृष्ण को। तो यहां पर बताते हैं स्वरूप दामोदर कि माता सरस्वती इंद्र के मुख में प्रवेश कर दी और कृष्ण का गुणगान उन्हें किया, तो इसे कहते हैं सारस्वत अर्थ। तो सरस्वती ने इन शब्दों का अलग से अर्थ प्रस्तुत किया और कृष्ण का गुणगान करना प्रारंभ किया। क्या कहती है वो? वाचालम, वाचाल का अर्थ होता है जो वेद के अनुसार केवल कुछ बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। मतलब उसकी वाचा बिल्कुल ही विचलित नहीं होती वेदों से, उसे कहते हैं वाचाल। तो इस प्रकार से ये है सारस्वत अर्थ। तो सरस्वती ने इस प्रकार से कृष्ण का गुणगान किया जो वेद तो बोलते ही है लेकिन उनके शब्द जो है वो वेद से और दूसरा कुछ भी नहीं बोलते। दूसरा शब्द प्रयोग किया था इंद्र ने बालिशम। बालिश का अर्थ होता है शिशु प्राय, छोटे बच्चे के समान। तो सरस्वती अर्थ बताती है बालिशम का अर्थ है गर्व शून्य, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बिल्कुल अभिमान नहीं होता है। तो इस प्रकार से कृष्ण षडैश्वर्य पूर्ण होने के बावजूद उनमें कुछ अभिमान का लवलेश भी नहीं है, ऐसे है हमारे मालिक श्री कृष्ण, ये ऐसा गुणगान किया। स्तब्धम मतलब सरस्वती अर्थ बताती है जो अन्य किसी को नमस्कार नहीं करते वो है स्तब्ध। तो ऐसे परम पुरुष सर्वश्रेष्ठ जिन्हें और किसी के सामने झुकना न पड़े वो है स्तब्धम। अज्ञम, अज्ञम का अर्थ इंद्र ने किया था मूर्ख, सरस्वती करती है जिन्हें कुछ भी अज्ञात नहीं हो, मतलब सब कुछ जानने वाले, सरस्वती का अर्थ था। और मर्त्यम, इंद्र कहा था कि यह साधारण मनुष्य के रूप में आया हुआ है, सरस्वती कहती है कि देखो बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए स्नेह के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अभी साधारण रूप में प्रकट हुए हैं, यह है उनकी महिमा। तो इस प्रकार से सरस्वती ने जो है वो अलग अर्थ इंद्र के शब्दों को निकाले थे। और इस प्रकार से जो जरासंध था उसने भी गाली दी थी कृष्ण को, उन्होंने कहा था पुरुष अधम और बंधुहन। पुरुष अधम का अर्थ है सारे पुरुषों में अधम, निम्न, वो है पुरुष अधम। और बंधुहन का अर्थ होता है जिन्होंने अपने संबंधियों का हनन किया हुआ है, मतलब कुरुक्षेत्र युद्ध की रचना की और यादव वंशियों का हनन हुआ, तो बंधुहन का अर्थ है अपने स्वयं के संबंधियों का हत्यारा, वो है बंधुहन। तो सरस्वती अर्थ निकालती है पुरुष अधम का अर्थ होता है कि सारे पुरुष जिनके अधीन हो वो है पुरुष अधम, मतलब जिनके अधीन सारे पुरुष हो, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ हो पुरुषोत्तम, इस प्रकार से उन्होंने अर्थ निकाला। और बंधुहन का अर्थ क्या निकालती है सरस्वती? बंधु का अर्थ होता है माया, और बंधुहन मतलब माया को भी विनाश कर दे वो है कृष्ण, जो है बंधुहन। यहां कृष्ण तहार नहीं मायार अधिकार। तो इस प्रकार से सरस्वती ऐसे अलग अर्थ निकालते हैं। और वो कहते हैं कि शिशुपाल ने भी कई सारी गालियां कृष्ण को दी थी और सरस्वती ने उनसे अलग निकाल के पूरा अलग अलग अर्थ जो है वो निकाले थे। तो इस प्रकार से आपका जो श्लोक का आप अर्थ सुना रहे हैं वो अर्थ चैतन्य महाप्रभु की निंदा के जैसा है, लेकिन माँ सरस्वती ने आपके मुख में प्रवेश करके चैतन्य महाप्रभु का गुणगान ही किया हुआ है। दो तत्वों में भगवान श्री कृष्ण अभी प्रकट हुए हैं, तो जो जड़ आप बोल रहे हैं वो अभी स्थावर रूप में जगन्नाथ जी के रूप में लोगों को दर्शन देने के लिए खड़े हैं, और जो लोग दर्शन के लिए नहीं आ रहे हैं उनको कृपा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अभी वो चलित रूप में है, चल रहे हैं। तो ये स्थावर है और ये चल है, तो चलायमान और एक जगह स्थिर जगन्नाथ और चैतन्य, इस प्रकार से जो है वो प्रकट हुए हैं। और दोनों की इच्छा एक ही है, बद्ध जीवों का उद्धार होना चाहिए, क्योंकि इच्छा एक है इसलिए दोनों जो है वो एक ही तत्व है, ऐसा हमने समझना चाहिए। तो इस प्रकार से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अभी गतिशील ब्रह्म बनकर विहार कर रहे हैं। तो तुम्हारा जो है वो इतना बड़ा सौभाग्य है कि सरस्वती ने आपके मुख से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करवाया है। तो वो जो कवि था, जो ब्राह्मण, वो स्वरूप दामोदर के चरणों में गिर पड़ता है और वहां पर उसने सब कुछ त्याग कर अभी वहां पर शरण ग्रहण की। फिर उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु से उन्हें मिलवाया गया, महाप्रभु के शरण में वो आया और वो वहीं पर रहा। सेई कवि सर्वत्यजी रहिला नीला चले, गौर भक्त गणेर कृपा के कहिते पारे। सब कुछ त्याग कर जो है वो सर्वत्यजी रहिला नीला चले, वो नीलाचल में ही रहा वो कवि, गौर भक्त गणेर कृपा के कहिते पारे। महाप्रभु की कृपा तो अपरंपार ही है, लेकिन उनके जो भक्त महाप्रभु भक्त गणेर कृपा, जो भक्त गणों ने जो कृपा दिखाई, स्वरूप दामोदर और आदि जो नीलाचल में वहां पर रह रहे थे, उन भक्तों ने जो कृपा दिखाई, उस कृपा के अभी मैं क्या वर्णन करूं। इसलिए हमें भी उनके कृपा का जो है वो पात्र अपने आप को बनाना चाहिए। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैंने प्रद्युम्न मिश्र का रामानंद राय के मुख से कृष्ण कथा का सुनना और ये कवि महाप्रभु की शरण में जाना, इससे मैंने रामानंद राय के गुणों का वर्णन किया हुआ है कि कितने वो बड़े पंडित थे। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जो अंतिम समय में थे, आखिरी 18 साल, वो केवल उनके ये दो प्रमुख संगी भक्त थे, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। तो ये इन दोनों के साथ में ही ये हमेशा चर्चा किया करते थे और महाप्रभु हमेशा विरह भाव में वहां पर रहा करते थे। तो जिस प्रकार से राधारानी विरह महसूस करती थी, तब ललिता सखी उनका सांत्वना करती थी और उनके भाव के अनुसार कुछ कथा सुनाती थी। तो उसी प्रकार से जब महाप्रभु विरह भाव प्रस्तुत किया करते थे, तो राय रामानंद और स्वरूप दामोदर ये उन्हें सांत्वना किया करते थे और उनके भाव के अनुकूल कुछ सुनाया करते थे, जिससे उनकी विरह अग्नि जो है वो शमन उसका होता था। तो इस प्रकार से राय रामानंद कितने उच्च स्तर के भक्त है, उसका वर्णन यहाँ पर जो है वो कविराज गोस्वामी उन्होंने किया हुआ है। श्रद्धा करी यही लीला यही पढ़े सुने, गौर लीला भक्ति भक्त रस तत्व जाने। जो श्रद्धा पूर्वक इन लीलाओं को सुनता है, क्या फल मिलता है? गौर लीला, जो चैतन्य महाप्रभु, जो गौरांग महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, उनमें से जो भक्ति है वो क्या है, भक्त वो क्या तत्व है और रस वो क्या तत्व है। भक्ति भक्त और रस तत्व, इन सब का जो है वो ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। तो कविराज गोस्वामी ने यह वृत्तांत हमें जो है वो सुनाया है। और अभी मेरा मोबाइल चला गया। तो जो आज का प्रश्न था, आज का प्रश्न है, दिखा सकते हैं? आज का प्रश्न बहुत आसान था। जब कीर्तन करते थे महाप्रभु के लिए और नित्यानंद प्रभु के लिए, तो उससे सुनकर लकड़ी और पत्थर भी पिघल जाते थे। तो ये आदिलीला के 11वें अध्याय में आता है और इसका वर्णन 10वें अध्याय में भी कुछ हद तक दिया हुआ है। तो ये तीन भाई थे, गोविंद घोष, वासुदेव घोष और माधव घोष। तो ऐसे कुछ पार्षद है जिनका वर्णन नित्यानंद प्रभु के पार्षदों में भी आता है और चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में भी आता है। तो ये पार्षद है जो दोनों के इसमें आते हैं और इसका सही जवाब है वासुदेव घोष, जो कीर्तन किया करते थे। और बाकी भक्तों के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, कोई नृत्य किया करता था और इस प्रकार से उनका नृत्य था कि सारे जगत को आकर्षित कर लेता था। तो वासुदेव घोष ये जो है ये बहुत सुंदर कीर्तन करते थे और जब माना जाता है ये जब कीर्तन करते थे तो पत्थर और लकड़े ये भी पिघल जाते थे, ऐसा उनका जो है वो दिव्य कीर्तन हुआ करता था। तो कई भक्त पूछ रहे थे कि हमें जो मॉक टेस्ट हुई है उसके जवाब चाहिए। तो हम यह कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम जो टेस्ट होती है उसके 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 प्रश्न भी नहीं दिए जाते हैं बाद में, लेकिन हम लोग क्योंकि गूगल फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यदि आपका मेल बॉक्स चेक करेंगे तो उसमें दो मेल आए रहेंगे आपको। तो सबसे पहले मेल में आपने जो प्रश्न है और उनके जो उत्तर आपने दिए हुए हैं वो आपको पुनः मेल के रूप में आ जाते हैं कि आपके जो 20 प्रश्न थे उनके आपके जवाब क्या थे वो आ जाते हैं, और दूसरा मेल आता है जिसमें आपको कितने मार्क्स मिले हुए हैं परसेंटेज के रूप में वो आ जाते हैं। तो आपके पास अभी प्रश्न भी है, आपने लिखा हुआ उत्तर भी है स्वयं का। तो आप क्या कीजिए, आप पुस्तक खोलिए और हम कहते हैं कि सही मात्रा में अभ्यास हुआ है ऐसा कब समझ लेने का, जब आप स्वयं प्रश्न तैयार कर सकते हैं तब समझ लेने का कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, और कठिन प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं तो और अच्छे से पढ़ाई आपकी हो गई है। कुछ भक्त बता रहे थे कि एक भक्त ने तो 200 पन्ने उसके डायरी के भर गए, इतने सारे नोट्स निकाले हुए हैं। तो इतने नोट्स भक्त निकाल रहे हैं, आनंद की बात है, हर्ष की बात है। तो आप भी जो है वो किताब खोलिए, देखिए वो प्रश्न कहाँ पर है, उसका जवाब किताब के अंदर ही छिपा हुआ है। और ऐसा भी आपको समझ में आ गया होगा, केवल प्रवचन सुन के पास नहीं हुआ जा सकता, और केवल जो है वो श्लोक और भाषांतर पढ़ के भी आप 100% मार्क्स नहीं ला सकते। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपको प्रवचन भी ठीक से सुनने चाहिए और उसके साथ साथ श्लोक और भाषांतर भी ठीक से आपको आना चाहिए। तो जो हमारी ये परीक्षा हुई, उसी प्रकार से जो 3 मई को जो अंतिम परीक्षा होने वाली है उसमें 3 स्तर के प्रश्न रहेंगे, कनिष्ठ स्तर के, मध्यम स्तर के और उत्तम स्तर के। 50% कनिष्ठ स्तर के प्रश्न जो कोई भी जवाब दे पाएगा जो इसने ठीक से पढ़ाई की है, मध्यम स्तर के प्रश्न कुछ मात्रा में और अधिक लोग जो अच्छे से पढ़े हैं, और जो आखिरी उत्तम स्तर के है वो तो जो सही में बहुत अच्छे से एक एक मिनट उसने सारा अच्छे से सुना हुआ है और अच्छे से उसने जो मार्किंग कर करके अच्छे से पढ़ा हुआ है, लिंक किया हुआ है, तब जाके जो है वो आप अच्छे से पढ़ सकेंगे और अच्छे से इसको जो है वो नंबर ला सकेंगे। क्योंकि कविराज गोस्वामी ने कहा, हमने अभी सुना ना, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नित्य कर पान, रोज जो है वो चैतन्य चरितामृत का हमने पान करना चाहिए। तो हम ये मौका आपको सुअवसर दे रहे हैं कि और अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, इस एक हफ्ते तक आप अंत्यलीला को सुनते रहिए, क्योंकि जो 10वां और 11वां अध्याय है उसमें जो पार्षदों का वर्णन आता है उन्हीं का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को भी एक शाखा बताया है आदिलीला के चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के वर्णन में 10वें अध्याय में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये शाखा है, तो भी उनका जीवन चरित्र हम लोग कल लेने वाले हैं। तो यदि आप कैमरा पीछे लेके जाएंगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी आपको याद है कब मिले थे मध्य लीला में महाप्रभु से, आपके लिए होमवर्क देता हूं, 2 बार मिले थे रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से। वो कब और कहां आप ढूंढ के रख सकते हैं, तो वो 2 बार मिले हुए हैं, महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया था मरकट वैराग्य मत दिखाओ, सही समय आएगा तो आप को मैं मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में बुला लूंगा। तो इस प्रकार से अभी वो सही समय कब आएगा और महाप्रभु कब बुलाएंगे और जब मिलेंगे तो क्या होगा, यह यदि आपको जानना है तो बने रहिए, मिलेंगे कल शाम ठीक 5:30 बजे रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे संप्रदाय के वो प्रयोजन आचार्य है, भगवत प्रेम उसको प्राप्त करना है तो उनके जीवन के बारे में हमें ठीक से समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।